आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत ने कई देशों को एक मंच पर लाने का किया सार्थक कार्य। प्रस्तावित सारंडा अभयारण्य के क्षेत्रफल को कम करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ग्राम सभाओं ने भी अपने अधिकारों की रक्षा की मांग रखी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी समेत देश भर की प्रमुख 25 नदियों के जल से लौह पुरुष की प्रतिमा का किया जाएगा अभिषेक। और जमशेदपुर स्थित जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 और 2 नवंबर को सीनियर स्टेट पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा भारत ने कई देशों को एक मंच पर लाने का सार्थक कार्य किया है, जो गर्व का विषय है। उन्होंने कहा प्राचीन काल से ही भारत और दुनिया भर की सभ्यताएं सूर्य की पूजा करती आ रही हैं। 4 दिवसीय वैश्विक आयोजन में दुनिया भर के 124 देश और 40 से अधिक मंत्री भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत क्विज कंपटीशन में भाग लेने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दूसरा विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद देश के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का शानदार अवसर है। लोग इस महीने की 31 तारीख तक क्विज में भाग ले सकते हैं। विकसित भारत क्विज कंपटीशन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। झारखंड के प्रस्तावित सारंडा अभयारण्य के क्षेत्रफल को कम करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने सारंडा में अब 31,468 हेक्टेयर के बदले 24,941 हेक्टेयर को अभयारण्य घोषित करने का अनुरोध किया था।
झारखंड के प्रस्तावित सारंडा अभयारण्य के क्षेत्रफल को कम करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल हुई सुनवाई के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी सेल के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें उसने अपने लीज एरिया को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर रखने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने सारंडा में 31,468 हेक्टेयर के बदले अब 24,941 हेक्टेयर को अभयारण्य घोषित करने का अनुरोध किया था। हालांकि एमएकएस क्यूरी ने सरकार के इस अनुरोध का भारी विरोध किया है। इस बीच ग्राम सभाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में फैसला शुक्रवार को संभावित है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है। जमशेदपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री सोरेन ने कहा कि जो सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार बताती है, वही आज आदिवासियों पर लाठी बरसा रही है।
ये सरकार का दायित्व तो है कि नहीं आदिवासी का जमीन बचाना। भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था? सिद्धू कानू का दाद गाँव में नहीं बचेगा तो आदिवासी कहाँ रहेगा? ये क्यों नहीं पूछ रहा है? क्यों लाठी चार्ज हुआ नो एंट्री के बाद? यहाँ क्यों नो एंट्री आए? अभी शहर में दिन रात गाड़ी, इतना तो मांग था कि दिन को यहाँ पर नो एंट्री कर दो। क्या आदिवासी क्षेत्र है? इसीलिए
भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि ये ऐसी आदिवासी सरकार है जो आदिवासियों का ही दर्द नहीं समझती। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश की प्रमुख 25 नदियों से जल एकत्र कर नई दिल्ली स्थित उनकी प्रतिमा पर जलाभिषेक किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत यह जलाभिषेक होगा। इसके लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल रांची के चुटिया स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्वर्ण रेखा नदी से जल उठाया। इस जल को अभिषेक के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @xhandle@rangi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिले में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 53,438 बच्चों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
गुमला जिले में समग्र शिक्षा अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म DBT योजना के तहत अब तक जिले के कुल 96,827 लाभार्थी विद्यार्थियों में से 53,438 बच्चों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक यूनिफॉर्म की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 600 रुपया तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 760 रुपये प्रति छात्र की दर से वार्षिक यूनिफॉर्म अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और प्रिंस खान गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ में आपराधिक गिरोह का एक शूटर घायल हो गया, वहीं उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है। DSP भोला प्रसाद ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कॉलोनी गायघाट में कल देर शाम एक AIRB जवान अजय यादव उर्फ सोनू की गोली लगने से मौत हो गई। जवान गिरिडीह में पदस्थापित था और छठ पूजा में घर आया था। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में गोली चली जो जवान के पेट में लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में छठ पर्व के मौके पर आज सुबह न्यू मधुकम स्थित छठ तालाब में 12 वर्षीय एक युवक फिसल कर गहरे पानी में डूब गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन गहराई अधिक होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। उधर सरायकेला खरसावां जिले के शहरबेड़ा छठ घाट पर कल शाम नदी में डूबे एक ही परिवार के 3 सदस्यों में संजय सिंह का शव आज NDRF की टीम ने बरामद कर लिया, जबकि तीसरे युवक प्रतीक कुमार की खोज अभी भी जारी है। इससे पहले कल एक युवक आर्यन का शव बरामद कर लिया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 355 अंक गिरकर 84,424 और निफ्टी 78 अंक घटकर 25,879 पर आ गया। जमशेदपुर स्थित GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 और 2 नवंबर को सीनियर स्टेट पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। वहीं 8 और 9 नवंबर को दुमका में 11वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता होगी। इसके लिए भी महिला खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये जानकारी रांची जिला हैंडबॉल संघ के सचिव विष्णु कुमार ने दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत ने कई देशों को एक मंच पर लाने का किया सार्थक कार्य। प्रस्तावित सारंडा अभयारण्य के क्षेत्रफल को कम करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ग्राम सभाओं ने भी अपने अधिकारों की रक्षा की मांग रखी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी समेत देश भर की प्रमुख 25 नदियों के जल से लौह पुरुष की प्रतिमा का किया जाएगा अभिषेक। और जमशेदपुर स्थित GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 और 2 नवंबर को सीनियर स्टेट पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।